पहले अपन माता के 1600 प्लस उपकार लिख लें। ये अभी तक इसके पीछे कोई साइंस नहीं समझ में आ पा रहा है कि एक जैसे ही स्वप्न दो लोग नहीं देख सकते, ये साइंस तक है। एक जैसा स्वप्न दो लोग नहीं देख सकते, एक ही व्यक्ति एक ही जैसा स्वप्न दो बार नहीं देख सकता, कुछ थोड़ा लिखा था। पर हर माता को जो तीर्थंकर की और ये स्वप्न 16 ही एक जैसे आते हैं और उनकी आठवीं वही होते हैं, ये एक कहना चाहिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी की चीज़ है। ये ऑर्डिनरी तो नहीं माने गए और ये भविष्य की सूचना देने वाले हैं। जैसे तीन तरह के स्वप्न होते हैं, एक दृष्ट शुद्ध और अनुभूत, ये एक उसमें आ जाते हैं, और एक रोग जन्य होते हैं और एक भविष्यसूचक स्वप्न होते हैं। जो दृष्ट शुद्ध अनुभूत है, बन्ने देखा है सुना है और जिया है, वही अपने स्वप्न में आ जाता है, तो वो एक तरह का है। एक रोग की वजह से बात कब की वजह से भी स्वप्न आते हैं, वो रोग से उत्पन्न रोगज है, और एक भविष्य की सूचना देने वाले स्वप्न। तो ये जो है भविष्य सूचक स्वप्न है, माता के जो स्वप्न आते हैं भविष्य सूचक स्वप्न।
ये कौन है पीछे?
अच्छा, 16 स्वप्न में नंबर पहला लिखे हाथी। माता जो है सबसे पहले हाथी देखती है, तो उसका क्या आशय? उत्तम पुत्र। हाथी इंडिकेशन है कि पुत्र जो होगा वो बहुत उत्तम होगा। दूसरा बैल। बैल इंडिकेशन है कि लोक में वो ज्येष्ठ होगा। ज्येष्ठ मतलब बैल वृषभ जो है वो इस बात का प्रतीक है कि लोक में वो ज्येष्ठ होगा। सिंह तीसरा है, स्वप्न में सिंह दिखाई पड़ना अनंत बल से युक्त होगा, अनंत बल से युक्त होगा तीसरा स्वप्न। ये अक्सर अपने वहाँ बने रहते हैं हर जगह। दो मालाएं दिखाई पड़ती
हैं,
तो ये धर्म का प्रवर्तक होगा, इस बात की सूचना मिलती है। और ये स्वप्न जो है माँ देख करके और पिता से पूछती है, भगवान के पिता से, मतलब वृषभ देव की माँ ने नाभि राय से पूछा, माता मरी देवी ने पूछा नाभि राय से, या कि सिद्धार्थ से पूछा कृष्णा ने, ये इस तरह से लेंगे। और वो अवधि ज्ञानी होते हैं पिता, तो अवधि ज्ञान से वो बता देते हैं।
पिता भी अवधि ज्ञानी होते हैं महाराज जी?
कुलकर तो पहले कुलकर जो हुए, आखिरी कुलकर हुए जिनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो अवधि ज्ञानी बहुत विशिष्ट। तभी तो माता पिता एक तो भाव में मोक्ष चले जाते हैं। सोचिएगा भगवान के माता पिता भी मोक्ष चले जाएंगे। उनके एक और है तीर्थंकर के परिवार की विशेषता कि उनके परिवार में कोई भी अपंग नहीं होगा। तीर्थंकर का परिवार जन कोई भी अपंग नहीं होगा, अंग से कोई भी नहीं, एक सब श्रेष्ठ होंगे, बाकी इंद्रिया मन सब कुछ एकदम ठीक मिलेगा। ये चार स्वप्न हो गए माला। फिर लक्ष्मी दिखाई पड़ती है स्वप्न, जो सुमेरु पर अभिषेक की प्रतीक है। लक्ष्मी का दिखाई पड़ना सुमेरु पर इनका अभिषेक होगा, इस बात की सूचना देती है। नंबर 6 पूर्ण चंद्र प्रतीक है, आनंदमयी होगा पुत्र, सबको आनंददायी होगा।
पूर्ण चंद्र
आनंददायी होगा। 7 सूर्य प्रतीक है, आभा युक्त, सूर्य प्रतीक है कि तेज या कि आभा युक्त होगा जो पुत्र होगा, विशेष आभा वाला। 2 कलश, दो कलश दिखाई पड़ते हैं माता को स्वप्न में, वो प्रतीक है अनेक निधियों का स्वामी होगा। 2 कलश 8वें नंबर, ये अनेक निधियों का स्वामी होगा। 9 नील युगल, 2 मछलियां, नील नील मछली को बोलते हैं नील, मामे बेटी के मतलब होगा फिश, 2 युगल नील के जोड़ा, ये प्रतीक है सुखी पुत्र होगा, सुख देने वाला भी और स्वयं भी और दूसरे को भी, सुखी होने का प्रतीक है नीम युगल। ये किसी को नहीं दिखाई पड़ेंगे, ये विशेषता है, इसमें से कोई भी स्वप्न सामान्य आदमी को नहीं दिखाई पड़ेगा, एक अकेला भी किसी को नहीं दिखेगा हाथी उस तरह से। अच्छा। आते एरावत हाथी, हाथी भी आर्डनरी नहीं, एरावत हाथी दिखाई पड़ता है स्वप्न, सब स्पेशल है। दो कलश मीन युगल सरोवर दिखाई पड़ता है, दसवां स्वप्न है जिसमें सरोवर दिखाई पड़ता है, सरोवर मतलब। तो ये प्रतीक है कि अनेक लक्षणों से शोभित होगा उत्पन्न होने वाला, तो अनेक लक्षणों से शोभित सरोवर प्रतीक है। ग्यारहवें नंबर समुद्र, समुद्र प्रतीक है कि केवल ज्ञानी होगा, अपार ज्ञान केवल ज्ञान का प्रतीक है समुद्र दिखाई पड़ता है, केवल ज्ञानी होगा। बारहवां सिंहासन दिखाई पड़ता है माता को, तो जगत गुरु सिंहासन दिखाई पड़ना मतलब जगत गुरु, तीनों लोगों का गुरु जगत गुरु, या कि साम्राज्य तीनों लोगों का साम्राज्य होगा, एक ही बात जगत गुरु कह लीजिए कि जगत का साम्राज्य मिलेगा, सिंहासन दिखाई पड़ेगा। नंबर 13 देव विमान दिखाई पड़ना, देव विमान ये प्रतीक है कि स्वर्ग से आया, स्वर्ग से अवतीर्ण। नंबर 14
महाराज एक ही है, जैसे ये 13वां है देव विमान का स्वर्ग से आने का प्रतीक, जैसे अपने ये बांधते हैं कि ये
एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है कि नरक से आएंगे, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं लिखा अभी, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन की तरह लीजिएगा तो चेंज हो जाएगा वो मेरे अंदर, क्वेश्चन पहले ही आ गया था प्रवक्ता सिंह के अंदर। ये भुंडाव सटनी में ऐसा हुआ कि नरक से आएंगे, नहीं तो कभी भी कोई भी स्वर्ग से जाते हैं सब तीर्थंकर, तीर्थंकर विशेष जो है इसलिए देव विमान। नागेंद्र भवन दिखाई पड़ता है, नागेंद्र भवन दिखाई पड़ता है, व्यंकर भवन वासी देव हैं ये नाग जाति के, तो उनका भवन दिखाई पड़ना नागेंद्र भवन 14वें नंबर का स्वप्न है, वो प्रतीक है कि अवधि ज्ञानी होगा, बचपन से अवधि ज्ञान लेकर पहला नागेंद्र भवन है, ज्ञान का धारी अवधि ज्ञानी होगा। नंबर 15 चमकते रत्न दिखाई पड़ता, चमकते रत्न दिखाई पड़ना ये प्रतीक है कि गुणों की खान होगा। नंबर 16 निर्धूम अग्नि दिखाई पड़ता, गुणों की निर्धूम अग्नि कर्म ईंधन को जलाने वाला, कर्मों को जलाने वाला मतलब अच्छी हुआ, निर्धूम अग्नि दिखाई पड़ना कर्म को जलाने वाला। अरे नहीं, एक ही रात में 16 स्वप्न आएंगे पूरे, अब सुबह उनका आज पूरी रात सभा में डिक्लेयर होगा कि होने वाला
यही
क्रम
रहेगा,
क्रम तो यही लिखा है, किसी किसी ग्रंथ में थोड़ा फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, ये उसके रात की क्या अंतिम पहल है, वर्त के पहले उनके गर्भ में आने से एक दिन पहले, और बस जैसे ही वो ये स्वप्न देखेंगे मतलब गर्भ में आ गए, आने से पहले उनको ये स्वप्न आएंगे और उसी दिन वो गर्भ में आएंगे। ये भी वो इंडिकेशन है कि भगवान आ गए सीधा सीधा बालक के उसमें आ गए। ये तीर्थंकर के बारे में एक लाइन और वो जोड़ लें कि तीर्थंकर के परिवार जन या पूरा कुटुंब कोई भी अपंग नहीं होता, एक ही होते सबसे, एक ही पुत्र होते हैं तीर्थंकर अपने माता पिता के एक अकेले होते हैं, ये भी पॉइंट लिख लें, उसने पिछला जो ऐड किया उसमें ऐड कर लें, तीर्थंकर अपने माता पिता के एक ही होते हैं, और दूसरा ये था कि उनके परिवार जन समृद्ध होते हैं अपंग नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चन उठ गया था ना चक्र भरत के पुत्र हुए 923 और उन्हें बोला ही नहीं, तो बड़ा उनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि तीर्थंकर के कुल में पैदा होने वाला और बहरा के गूंगा हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला प्रश्न जाके ऋषभदेव से करा कि आपके कुल में यानी मेरे पुत्र आपके नाती वो तो बहरे हैं, गूंगे भी हैं, बोलते भी नहीं, ना सुनते हमारी कोई बात को। तो उन्होंने कहा कि ये वीतरागी से ही बोलेंगे, ये रागी से नहीं बोलते। अगर तुम्हें देखना हो तो देख लो, समुचरण में सब आए थे, सब भगवान से बात करना उन्होंने शुरू कर दी। तो विश्वास हो गए करे तो गूंगे नहीं थे, हमसे नहीं बोलते। इनका नियम था जन्म से ही बोले ही नहीं, किसी से नहीं बोले, बोलेंगे तो वीतरागी से बोलेंगे, रागी से क्या बोलेंगे, ऐसा होता। वो कहाँ से आए थे तो निगोद से आए थे सीधे, और दूसरी पर्याय भी नहीं गए, निगोद से सीधे आकर के मनुष्य होकर के और मोक्ष चले गए, ऐसा होता है। 923 जी वो स्पेशल रहे होंगे। अब क्या उनके उसमें लिखा है परिणामों में क्या निर्मलता आई होगी, उनने एक दो इंद्री तीन इंद्री बने नहीं, वो सीधे बने तो तीर्थन वो बने, मनुष्य बने, और वो भी चक्रवर्ती के पुत्र 923 और सीधे मोक्ष चले, ऐसा आता है।
पुत्री
हाँ, तीर्थंकर के पुत्री हैं। अब वो फिर स्वप्न विज्ञान पूरा पढ़ना पड़ेगा, 17 प्रकार के स्वप्न होते, 17 टाइप स्वप्न, फिर मैंने इसके शार्ट में बता दिया।
हाँ तो पुत्री
हुई ना, वो वृंदाव सर्पनी है इसलिए होती नहीं है, हुई। हाँ लेकिन माला जो है, जैसे अपन ये माने कि जैसे माला में हम पिरो देते हैं एक एक मोती, ऐसे संजो देते हैं, ठीक इसी तरह ये सबके लिए जो है एक उसमें धर्म में पिरो देंगे। धर्म कंठ गताम जस्रम, ये भक्तांबर के स्तोत्र की माला पहन लो, कंठ में धारण कर लो तो मोक्ष हो जाएगा। तो ये माला जो है एक इसकी प्रतीक हो, धर्म की प्रतीक मानेंगे, धर्म का प्रवर्तन करेंगे, अर्थात सबको एक सूत्र में पिरो देंगे, धर्म के सूत्र में पिरो देंगे, इसलिए शायद माला धर्म का प्रवर्तक ही है। मीन युगल भी मुझे बहुत कंफ्यूज किया था कि मीन का युगल दिखाई पड़ना सुख का प्रतीक है, मतलब बहुत सुख होगा उनके लिए, सुखी रहेंगे हमेशा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आकस्मिक, 3 प्रकार के कष्ट में से कोई कष्ट नहीं होगा। ये दो मीन युगल इसका अर्थ करते हैं।
लक्ष्मी का सुमेरु पर
अभिषेक, लक्ष्मी सुमेरु पर अभिषेक होगा, वो लक्ष्मी के दोनों तरफ वो नहीं करते हैं,
हम माला पहनते
हैं, माला पहनाते हुए हाथी वो दिखाई पड़ते हैं उनको, लक्ष्मी के दोनों तरफ वो प्रतीक है कि इनका भी सुमेरु पर ले जाकर के इंद्र के द्वारा अभिषेक होगा। ये तो टैली होता है,
जो होता है इंद्र का एरावत आ गया, हो गया और सही हो गया।
हां जी, एक ही
लोक में ज्येष्ठ, सबसे बड़े घर में नहीं, लोक में
ये लोक में जिस्ट होगा,
पूरे लोक में भैया। 6 महीने पहले, और 6 महीने वो बरसेंगे, और 9 महीने तक,
15 महीने
तक बरसेंगे रोज, एक समझ में 3.5 करोड़, 10.5 करोड़ तो बाद बसते हैं जब जन्म होता है, 10.5 करोड़ चमत्कृत हो जाती है। उसमें लिखा हुआ है कि तीर्थंकर के जन्म के समय एक क्षण के लिए नरक में भी मार पीट रुक जाती है, एक क्षण के देवों के भोग विलास सब छिन जाते हैं एक क्षण के लिए, घंटे बजना शुरू हो जाते हैं पूरे उसमें देवलोक में, और सिंहासन हिल जाता है इंद्र का, तो कौरण वाली ज्ञान लगाया जाता है, भगवान उत्पन्न हो गए, चलो सब भोग भोग की सामग्री सब छिन भिन्न हो जाती है सब, और इधर दुख दूर हो जाता है, उधर सुख के साधन छिन जाते हैं देवलोक में, इधर दुख के साधन छिन जाते हैं, और मनुष्य और ये तो तिरंग चौका तो खेलता नहीं, वो तो देखते ही रहते क्या
होगा, वो तिरंगा सब
जो उनके दर्शन करता
वो तिरंगा हो
सकता। लेकिन एक चीज और देखना, एक मारीची का गीत भी है जो अपने ही दादा चौबीस
भगवान जी था
लेकिन उतने भाव पहले मन में घूमती जब तक इसलिए लिखा हुआ है कि ये भगवान कहते जरूर हैं कि आप तीन लोग के द्वारा पूज्य हैं लेकिन तीन लोग के द्वारा पूज्य नहीं है आप ही बताओ मिथ्या दृष्टि आपको कहाँ पूज तो मिथ्या दृष्टि तो बहुत लोग वे आपको कहाँ पूज
पूजनीय
ये कहते आप वो तो पूज्य
पूजनीय है
उससे कहाँ
है सवाल
जो मिथ्या दृष्टि जिनके अंदर ग्रंथि है वे कहाँ पूजते हैं आपको वो आप तीन लोग में पूज ये इस तरह हो गया तीर्थंकर के बारे में और अपन जो है चक्रवर्ती और इन सब के बारे में देखते हैं तीर्थंकर के नाम लिखना आपको दिक्कत होगी चिन्हों के बारे में यही है कि भगवान के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं बचपन से जन्म से 1008 तो उनके दाहिने पैर के अंगूठे में कोई ना कोई चिन्ह होता वो सबका डिफर करता है तो जब इनको अभिषेक के लिए इंद्र ले जाते हैं सुमेरु पर तब उनके दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह इंद्र को दिखाई पड़ता है ऑर्डिनरी सबको नहीं दिखाई पड़ता जो चिन्ह इंद्र को दिखाई पड़ता है वो जैसे केमिस्ट्री वाला देख लेगा कि कहाँ स्टार है कहाँ पर के स्वस्तिक है ये सब उसी तरह सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह होता वो उनकी अंकर का चिन्ह निर्धारित कर दिया जाता उसी समय जब भगवान का सुमेरु पर ले जाकर के अभिषेक होता है जन्माभिषेक उस समय दिखाई पड़ता ये इस तरह का सीखने इंडेक्स हो गया इस तरह का तीर्थंकर वैसे तो अपन नहीं कह सकते कौन से तीर्थंकर और तीर्थंकर प्रतिमा इसी से पहचानी जाती है कि नीचे कौन सा चिन्ह है अगर चिन्ह नहीं बना और आठ प्रातिहारी बने हैं तो सामान्य आनंद है और चिन्ह बना है आठ प्रातिहारी बने हैं तो तीर्थंकर है और अगर चिन्ह भी नहीं बना प्रातिहारी नहीं बने तो सिद्ध भगवान है ये है चिन्ह और प्रातिहारी है तो तीर्थंकर
अहम
प्रातिहारी आठ विशेष अतिशयकारी वस्तु अस्त प्रातिहारी दिव्य तरुण पुष्प सुगस्ती लिखना इंद्र व्याचन आसन योजन भूषण आतप वारण चामर युग में यश विभाति च मंगल के
चंद्र
प्रातिहारी तीर्थंकरों के होते हैं आठ प्रातिहारी चिन्ह बना हो जिस मूर्ति में वो तीर्थंकर अरहंत की प्रतिमा है सामान्य अरहंत नहीं है तीर्थंकर पद पर रह करके अरहंत पद बना है जिन्होंने ये हो गया और जिनके चिन्ह नहीं बना और आठ प्रातिहारी है तो सामान्य से अरहंत भगवान की प्रतिमा और जब प्रातिहारी भी नहीं बने चिन्ह भी नहीं बना तो कोई प्रतिमा सिद्ध भगवान की कहलाएगी ये खाका काट करके जो बनाते हैं वो गलत है जो ऊपर जो बनाए जाते हैं ना उसके मनस्थम पर वही सिद्ध भगवान की
बना दिया चिन्ह बनता नहीं
ठीक ये तो क्लियर हुआ कि नहीं आया समझ में प्राधिकारी मतलब आठ विशेष वस्तुएं जिसमें होता है दिव्य तरु अर्थात अशोक वृक्ष अपन सुनते हैं ना कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो अशोक वृक्ष हो गया दिव्य तरु पुष्प सुवृष्टि ऊपर से भगवान के धीरे धीरे पुष्पों की वृष्टि होना ये दूसरा प्रातिहारी है दिव्य तरु पुष्प सुवृष्टि दुंदुभी अब जो है दुंदुभी बाजे बन ये कहलाते दुंदुभी बाजे बजना 10.5 करोड़ प्रकार के दुंदुभी बाजे बजते हैं ये तो ये दुंदुभी बाजा ये प्रातिहारी है
प्रतिमा बनता हमारा ये
प्रतिमा के चारों तरफ बनते हैं आठ प्रातिहारी या फिर चांदी सोने के रखे जाते हैं
अच्छा
स्पेशली दिव्य तरु सुरपुष्प सुदृष्टि दुंदुभी आसन सिंहासन ये प्रातिहारी है
चमत्कार
एक मिनट और दिव्य ध्वनि सुरपुष्प सुदृष्टि दुंदुभी आसन योजन घोष योजन घोष मतलब दिव्य ध्वनि फिर छत्र फिर चमर चमर मतलब वो ऐसे बोलते हैं ना वो कहलाते चमर तो छत्र तो भगवान के तीन छत्र हैं और चमर और आभा मंडल पीछे जो बना हुआ है वो आभा मंडल ये आठ विशेष बातें होती हैं तो वो कहलाएंगे अहंग और चिन्ह भी बना दिया तो वो हो गए तीर्थंकर और नहीं है ये दोनों चीजें तो समझ से हैं जो कि मनु अंकित करते हैं उसमें दिव्य धनु के लिए चिन्ह में कैसे अंकित करेंगे और आपको उसका फोटोग्राफ बता सकते हैं।
तो ये करते हैं महाराज ऐसा तो फॉलो नहीं हो पाता
नहीं पास नहीं हो पाता फिर भी कोशिश
तो मतलब ये तो आइडियल है
ये आइडियल है फिर आपको दिखा दूंगा फोटोग्राफ कैसे बनाते ये हो गया। अब अगर चक्रवर्ती के बारे में थिंकर के बारे में फिर जो भी क्वेश्चन और रह जाएंगे तो आप पूछते रहिएगा एक जनरल आइडिया अपने को हो गया। चक्रवर्ती का मतलब होता है छह खंड का स्वामी। चक्रवर्ती के मायने होता है छह खंड। अब छह खंड समझ में नहीं आएंगे आपको कि छह खंड कौन से होते हैं तो इसको समझने के लिए तो फिर अपन जब लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी तो जो है कई दिन में छह खंड समझाऊंगा तो बहुत लंबा जवाब है या जनरल आइडिया दे। क्या होता है एक पूरा का पूरा ग्लोब में जम्बू द्वीप गोल इमेज करेंगे जम्बू द्वीप में छह पोर्शन कर देंगे चुपचाप थोड़ा सा शांति से भैया जम्बू द्वीप के छह पोर्शन कर दें उसमें से नीचे वाला पोर्शन वो भारत क्षेत्र कहलाएगा। तो एक गोल है गोल में इतना एक एक साइड ऐसा गोल और इतना ये इस तरह वो किताब में दिया हुआ है ध्यान रखिए। क्या मानेंगे अपन नीचे तो ऐसा है चंद्रकार का और यहाँ से इतना कट हो जाएगा इतना पोर्शन ये हो गया पूरा भारत क्षेत्र मान लीजिए। अब भारत क्षेत्र में भी बीचों बीच से एक पर्वत है तो दो भाग हो गए और फिर क्या है इनमें भी जम्बू और वो गंगा और सिंधु नदियां निकली हैं तो वो इसको पूरा ऐसे डिवाइड करती हैं तो इस तरह से एक दो तीन ऐसे इधर हो जाते हैं और तीन इधर हो जाते हैं उसमें जो बीचों बीच का है वो अपना आरी खंड कहलाता है पांच जो है लेक्ष खंड कहलाते हैं ऐसे पांच खंड और एक आरी खंड ये कहलाते हैं छह खंड। तो इन छह खंडों का स्वामी इन छह खंडों का अधिपति ऐसा उसमें फोटो बना हुआ है अगर उठाए आप तो उसमें से अभी अभी भाग रखती है उसने तो ग्यारह तीसरा भाग दिखा दीजिए उसमें चार वॉल्यूम्स बिल्कुल सामने रखे होंगे चित्र बता दें तो वो कहलाता है छह खंड। उन छह खंडों के अधिपति को या कि इसको कहेंगे यूनिवर्सल मोनार्च या कि किंग ऑफ किंग्स 32,000 राजाओं का राजा किंग ऑफ किंग्स
32,000 राजा
32,000 मुकुट एक एक कैंडर में भी कई कई रखेंगे। चक्रवर्ती का वैभव बहुत विशाल होता है चक्रवर्ती प्रथम मोक्षगामी होता है। नीचे सबसे नीचे उसमें अरे वहां नहीं ये सामने दिख रहे हैं कार्टून के ऊपर चार वॉल्यूम मुझे दिख रहे हैं यहाँ से कार्टून के ऊपर
अब अरे
अब फट भी रखे जा रहा नहीं नहीं नहीं
अलमारी के
ऊपर
मुझे यहाँ से देखना
है अगर तो ये लिख लें अपन छह खंड का स्वामी यूनिवर्सल मोनार्क या किंग ऑफ किंग्स 32,000 राजाओं का स्वामी। इसके 14 रतन होते हैं और 9 निधियां होती हैं। ये अपन हमेशा सुनते रहते हैं 14 रतन और 9 निधियां तो वो 14 रतन के नाम लिखना हो तो लिखवा सकता हूँ और 9 निधियां भी होती हैं बस इतना ही परिचय चक्रवर्ती का है। तीसरा भाग नंबर 3 तरह है एक दिन बैठ करके इसको पूरा लोक के बारे में आप समझ लीजिएगा वो सेंटर में मेरू पर्वत है यहाँ पर और ये विदेश है और विदेश क्षेत्र के यहाँ पर ये क्षेत्र दिख रहे हैं तो ये जो उत्तर क्षेत्र दिख रहा ये भरत क्षेत्र में ये आरिखंड है और ये पांच प्रेक्षखंड ऐसे बने ऐसे ही जैसी रचना यहाँ होती वैसे यहाँ होती और ये टोटल ग्लोब ये जम्बू द्वीप एक इमेज कर लीजिएगा जब आप इसको देखेंगे इसमें गौर से तो पूरा समझ में आएगा। अब इसका वो पोर्शन दिखा देता हूँ अकेला जो अपनी जिसमें अपन रह रहे हैं ये इस तरह ये पोर्शन है जिसमें अपन रहते हैं ये पूरा चारों तीनों तरफ अपन देखें तो समुद्र है और ये इस तरफ हिमालय पर्वत जैसा है और यही स्थिति अपने इसकी बनती ये बीच में जो पर्वत पड़ा ये विजयार की श्रेणी कहलाती इसकी वजह से डिवाइडेशन हो जाता है और ये गंगा और सिंधु नदी यहाँ से निकली है और ये दोनों तरफ उत्तर और पूर्व पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है उनकी वजह से 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ऐसे ये क्षेत्र बीच से है और ये छह क्षेत्र बन गए इनको छह खंड बनते इन छह खंडों का पूरा अधिपति जब दिग्विजय करने जाता तो ये अयोध्या यहाँ से निकलता है और इस नदी को क्रॉस करके यहाँ से प्रवेश करता है, और यहाँ पर बजार की गुफाओं में 6 महीने तक वहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसके पहुंचने से, तो 6 महीने तक उसमें से आगे निकलती तब तक वो रुका रहता, फिर उसी में से प्रवेश करके मृक्षखंड में जाता, मृक्षखंड को सबको जीतता हुआ यहाँ से, और फिर यहाँ से प्रवेश करता हुआ अयोध्या में लौट आता। ये चक्रवर्ती की विजय है, और यही तो चक्रवर्ती विजय करके लौटे थे भारत, तो अटक गया था यहाँ पर आकर के। तब फिर अगर कोई भी उनका आधिपत्य स्वीकार ना करे तो वो हारे हुए माने जाएंगे, चक्रवर्त जाएगा, ये उनका नियोग होता है। ये 6 खंडों को जीतने वाले, हर बार एक चक्रवर्ती आता है और वो इन 6 खंडों को जीतता है, तो इसलिए कहते हैं कि ये किसी की नहीं हो पाई जिसने जीता।
हर काल में
हर तीर्थंकर माने 12 चक्रवर्ती होना है पूरे 24 तीर्थंकर के काल में, तो बारी आएंगे 12 जीतेंगे, ऐसे कितनी असंख्या उत्सर्तियां अवसर्तियां हो सके जिनमें चक्रवर्ती। और यहाँ जो पर्वत बना है ये वृषभगिरी पर्वत है, इतनी यात्रा पूरी करने पर यहाँ जाके अपना नेम प्लेट लगाना चाहता है, अपना प्रशस्ति लिखना चाहता है, तो इतना बड़ा पहाड़ है कि वहां कहीं भी जगह नहीं मिलती, पहले से नाम लिखे रहते हैं, तो ये कहता है कि एक नाम मिटा के मेरा लिख दे, इतना अहंकार कि मैंने दोनों 6 खंड को जीता, तो वहां चूर हो जाता है कि ऐसा तो कई बार जीत चुके हैं 6 खंडों को, मैंने कोई नई बात नहीं करी, फिर भी यहाँ अपना नाम लिख करके आता है, ये इसमें 6 खंड तो इनका अधिपति होता है चक्रवर्ती। इसके 14 रत्न होते हैं जिसमें की लिखना होते हैं, चक्र होता है लेकिन ब्रह्म चक्रवर्ती में यहाँ भरत होगा तो ये भारत कहलाएगा, वो एरावत है तो चक्रवर्ती का नाम एरावत होगा, उसके नाम पर एरावत क्षेत्र, ये भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत भरत क्षेत्र है, चक्रवर्ती का विजय प्राप्त करता है। अब तो ये सिद्ध भी हो गया, पहले लोग मानते थे कि दुष्यंत पुत्र के नाम पर है, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर, अब तो सिद्ध हो गया कि नहीं, ये भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ये भारत वर्ष, ये हो गया 6 खंड का अधिपति, यूनिवर्सल मोनार्क या किंग्स ऑफ किंग, 32,000 राजाओं का स्वामी, 14 रत्न और 9 विधियां इसके होती कोष में। चक्र रत्न क्या है, तो रत्न में चक्र छत्र
खड्ग चक्र
छत्र, पहला चक्र फिर छत्र फिर खड्ग फिर दंड, दंड मतलब नहीं समझते, चांदी का अक्सर जब पूजा होगी भगवान की तब दोनों तरफ जो है लगा के लोग जो है लेके जाते ऐसे राखी जैसे चांदी के बने हुए, वो दंड कहलाते
हैं, हाँ,
वो दंड कहलाते हैं। ये कांकणी, कांकणी जो है अस्त्र होता है, कांकणी कांकणी मणि, इन सब की विशेषताएं देखने बैठोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, इनकी बहुत, इनके रक्षक बड़े 1,000 देव होते हैं एक एक रत्न की रक्षा करने वाले, और इनसे कितने कितने काम होते हैं। हाँ, ये क्षण भर के अंदर कांकनी नाम का अस्त्र तो है, क्षण भर में पूरी जमीन में छेद करके और आर पार कर सकता है, इसका इसके बाद वो क्वालिटी होती है, तो वैसे इनकी विशेषताएं लिखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा, उस समय भी ये सब होता था ऐसा नहीं है। कांकनी अस्त्र मणि, मणि उनके स्पेशल रत्न है। चर्म, चर्म का इतना बड़ा तंबू होता है कि अक्षौणी सेना उस तंबू में समा जाती है, इतना बड़ा चर्म का तंबू, चर्म तंबू, ये उनके पास रत्न की तरह होता है, उसको पीस के चले जाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है, वो पूरी अक्षौणी सेना उसमें आ जाएगी, हाथी घोड़े मय सब पूरी सेना के, जिसमें 84 लाख हाथी होते हैं एक अक्षौणी सेना, बहुत विशेष सेनापति। ये तपस्या से बनते हैं, पूर्व जीवन में मुनि कई वर्षों कई जन्मों में मुनि बन करके तपस्या करते हैं तब जाकर ये पद मिलता है और इससे सीधा मोक्ष पहुंच जाता है। सेनापति ये एक रत्न है उनका, ग्रहपति ये भी रत्न है, 365 दिन के 300 रसोई होते हैं उनके, हाँ 365 रसोई होते हैं, एक दिन का एक रसोईया उसके बाद चेंज हो जाएगा। चक्रवर्ती का भोजन बनाना आर्डनरी बात नहीं, चक्रवर्ती का भोजन कोई कर ले तो मैंने हजम नहीं कर पाया, एक उसका दाना चक्रवर्ती के भोजन का, सिर्फ उनकी जो पट रानी है वो उसमें से एक छोटा सा कण दिन भर में खा पाती, जितना चक्रवर्ती का एक लड्डू बनता है खाने में, वो इतना भारी होता है, ये अपने यहाँ आता है। अब ये स्पेशल अपन विश्वास ही कर सकते हैं क्योंकि देखा तो नहीं, लेकिन हमारे भगवान मूर्ति नहीं बोले हमें विश्वास, बुद्धू गाय को बनाएंगे हमें इस तरह से, तो कहता हूँ तो मुझे तो लगता है आश्चर्यजनक चीज है। श्री कृष्ण जब हरण करके रुक्मणी को ले गए थे तो रुक्मणी को संदेह हो गया कि ये कौन लेके जा रहा है हरण। पहले जो है हरण भी करता था तो ये मानते थे कि ठीक है अच्छा किया, अगर तुम में ताकत है तो ठीक है हम चलते तुम्हारे साथ। तो इनको संदेह हो गया कि ये श्री कृष्ण है कौन जो कि मुझे हरण करके जा रहा है, ताकत है कि नहीं। तो श्री कृष्ण वली यानी थे फौरन जो है अपनी अंगूठी में से हीरा निकाल के ऐसा मसल दिया तो चूरन होकर गिर गया था। तो रुक्मणी कहा कि सही आदमी हरण किया है कोई दिक्कत नहीं, उनको विश्वास दिलवाने के लिए कि चूरन कर दिया था पहले, ये इस तरह का छत्राणी है तो बलशाली के द्वारा हरण की गई तो ठीक है, नहीं तो स्वीकार नहीं करते। तो जब वो तो चक्रवर्ती नहीं, तीन खंड का अधिपति है नारायण और चक्रवर्ती उससे भी ज्यादा होते हैं, ये ग्रहपति होगा गज अश्व
गज
ये सब स्पेशल होंगे, इनकी क्वालिटीज लिखी है एक एक रत्न की कितनी क्वालिटी होती। गज गज मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, गज अश्व पुरोहित ये भी स्पेशल होगा, स्थपति तक्षक मतलब वास्तु विज्ञानी तक्षक स्थपति कहलाता है, हिंदी कोई लिख लो गया स्थपति वास्तु विज्ञानी
तक्षक
कलाकार वो मूर्ति का
सब
युवती पटरानी युवती ये रत्न की तरह है, उसके कोई पुत्र नहीं होगा और जैसी कुमार अवस्था में रहेगी वैसी ही पूरे जीवन तक चक्रवर्ती के जितनी आयु है उतनी आयु तक क्यों की क्यों
पुत्र नहीं हुआ,
नहीं पटरानी के पुत्र नहीं होता, पटरानी नियम से नरक जाती है उसको इस बात का अहंकार होता है, पटरानी नियम से नरक जाती है उसको अहंकार होता है कि मैं चक्रवर्ती की अर्धांगिनी हूँ पटरानी, 96,000 रानियों के ऊपर बॉस, और जब भी कोई फंक्शन होगा तो 96,000 नहीं बैठेंगे, सिर्फ अकेली पटरानी चक्रवर्ती के साथ धर्म के अनुष्ठान में बैठेंगे। कितने लोग पढ़ना थी पढ़ा इसमें नहीं, और दूसरी किताब नहीं मान सकते युक्ति का है कि वो पढ़ जाएगी, बट नौ निधियां लिखिएगा अभी कंफ्यूजन मत बताओ
एक असुर है असुर जो है गज के बाद
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
हो गए
14 हो गए
असुर लिखा आपने
चर्म तंबू
चर्म इसका नाम है चमड़े का नहीं होता चर्म नाम का रहते हम पहले ही बता देते नहीं थे निधियां और लिख लीजिएगा काल नाम की निधि होती है उनके पास निधि नौ निधियां होती हैं हमेशा सुनते हैं अपन 14 रतन नौ निधियां चक्रवर्ती की तो क्या है ये निधियां नौ निधि होती हैं जिसमें काल उनके पास काल जो है निधि की तरह है वो चाहे तो सब ऋतु के फल और सब आपके काल विषय जितने भी शास्त्र हैं उन सब का उनके लिए ज्ञान होता है चक्रवर्ती के लिए इतना ये निधि की तरह उनके पास काल का ज्ञान होता महाकाल महाकाल कहलाता भाजन महाकाल निधि से भाजन इत्यादि इजीली मिल जाते हैं कोई भी प्रकार का कोई भी वो चाहिए वो आइटम धनतेरस वाला तो वो सब तो उनको इस रत्न के द्वारा उनको सब उपलब्ध हो जाए। पांडु नाम का रत्न है जिससे कि विभिन्न प्रकार के धान्य प्राप्त हो जाते इसमें आप पांडु पर लिखें ब्रैकेट में धान्य लिख दे धान उत्पन्न करने वाला विभिन्न प्रकार के सब धान लाने मानव रत्न होता है ये नाम है मानव लेकिन है वो नीति और आयुध विद्या आयुध शास्त्र या कि नीति शास्त्र मानव नाम का रत्न निधि है सॉरी शंख निधि है शंख सिर्फ प्रतीक है और इसमें सब म्यूजिक के एपरेटस आ जाएंगे शंख प्रतीक है म्यूजिक एपरेटस के लिए। छठवें नंबर की निधि है पद्म जिससे कि पूरे वस्त्र इत्यादि विभिन्न प्रकार के पद्म। नंबर 7 नई सर्प उनके नाम ही याद नहीं रहते नई सर्प नाम है एक ही मात्र नई सा पा के ऊपर है नई सर्प
नई सर्प
नई सर्प का मतलब होता है भवन सैया आसन इनको मेंटेन करने वाला ये रत्न भवन सैया और आसन को मेंटेन करने वाला पिंगल नाम का रत्न जिससे कि आभूषण बनते हैं वो लिखा लिखी है पिंगल हीरा पिंगला वो तो संगीत वाली भाषा में है हीरा पिंगला पिंगल आभरण और नौ नंबर नौ में विभिन्न प्रकार की रत्न नाना रत्न ये नौ लिखियाँ होती हैं, लिख लीजिएगा उस और बस। अब लिखें बलभद्र, मैं सोच रहा था कि आज पूरा करवा दूंगा बलभद्र। ये बलभद्र नौ लिखे थे अपन ने कला का पुरुषों में, चक्रवर्ती बारह हो गए, उनका स्वरूप भी हो गया, ये दिग्विजय करते हैं, छह खंडों को जीतते हैं, ये सब डिटेल अपन नहीं सीखेंगे इसका बहुत डिटेल। बलभद्र ये नारायण के भाई को बलभद्र कहते हैं, बलभद्र मतलब नारायण के भाई। नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाते और कहीं नहीं जाएंगे, मैक्सिमम तो मोक्ष ही जाएंगे, कोई अटक जाए तो स्वर्ग जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। नारायण के भाई नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं, इन्हें राम भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम राम है, इसलिए रामचंद्र जी का एक्चुअल नाम पद्म था लेकिन उनको राम कहते हैं क्योंकि बलदेव को राम कहा जाता है। और बलभद्र जो श्री कृष्ण के भाई थे उनको बलदेव कहते थे, वो बलभद्र हैं, राम भी बलभद्र हैं। तो इनके नाम लिखना है क्या, नौ बलभद्र के। नारायण किसे कहेंगे, बलभद्र के भाई को नारायण कहेंगे, बलभद्र का भाई होगा नारायण और नारायण के भाई को बलभद्र में, ये दोनों में फर्क है। बलभद्र का पद मिलता है तपस्या से, तो नारायण का पद मिलता है तपस्या से, भ्रष्ट होने फर्क। नारायण का पद मिलता है तपस्या का से भ्रष्ट, मतलब ये कि तपस्या का फल मांग लिया कि मुझे नारायण पद मिल जाए, करी की तपस्या मोक्ष के लाए तो मांग लिया नारायण से, बोला ठीक बन गया, क्या देखते हैं मैं नारायण का शत्रु। नारायण बलभद्र के भाई तीन खंड के अधिपति नारायण, वो चक्रवर्ती छह खंड के, ये उनसे आगे तीन खंड, इनका सब कुछ वैभव आधा आधा होता है,
तीन खंड का अधिपति,
तीन खंड के अधिपति। नियम से नरक गामी, नरक जाएंगे, इतना बड़ा पद पाने के बाद भी पद का दुरुपयोग करेंगे, हिंसा करेंगे, इसलिए लड़वाने में
नारायण
फौरन बड़े रामचंद्र जी शांत रह जाए, लेकिन लक्ष्मण जी फौरन धर्म से धंकार देंगे क्योंकि देवता हूं। तो ये जो है
नीचे आएंगे, बलभद्र के नीचे आएंगे, बलभद्र
तो अलग चीज है, अब लिखना पड़ेगा नाम, अचल विजय भद्र सुभद्र सुदर्शन नंदी मित्र नंदी के पद और बल, ये नौ नारायण नौ बल देव थे इस काल में। अब क्या मतलब इनके नाम बम याद रखने से, मतलब नहीं एक इमेज बनी रहे कि बलभद्र क्या होता है, नारायण क्या होते हैं, प्रति नारायण ये भी तीन खंड के अधिक अधिपति होते हैं लेकिन नारायण के प्रतिद्वंदी होते
हैं,
नारायण के प्रतिद्वंदी। दोनों में तीन खंड को लेकर लड़ाई होती है कि ये तीन खंड मेरे और वो कहते हैं ये भी मेरे भी है, दोनों प्रतिद्वंदी होते हैं और नारायण की वृत्ति के द्वारा प्रति नारायण की वृत्ति होती है। क्या क्या लिखने अपन प्रति नारायण में, निदान से उत्पन्न तीन खंड के अधिपति नारायण के प्रतिद्वंदी नरक गामी, चार इनकी वो निदान से उत्पन्न बीच में, निदान से उत्पन्न नंबर वन, नंबर टू तीन खंड के अधिपति, नंबर थ्री नारायण के प्रतिद्वंदी, नंबर चार नरक गामी। निदान से उत्पन्न, निदान मतलब भावी भोगों की आकांक्षा कर लेना, करी की तपस्या अच्छे के लिए और उससे आकांक्षा कर दी, इसको बोलते निदान। फिर भी जो है वो आपस में अयोध्या तो किसी के पास नहीं रहेगी क्योंकि उसी समय कोई चक्रवर्ती होंगे, उसी समय कोई तीर्थंकर होंगे तो वो आएंगे, हालांकि चक्र इनका मिलन नहीं होता, ये मैं नहीं बताना चाह रहा था, चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण भी आपस में नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, दो तीर्थंकर एक साथ नहीं मिलेंगे, दो चक्रवर्ती दो बलभद्र भी है, दो दो टीचर एक क्लास में चले जा रहे तो चला उपद्रव में पढ़ाई भेज रहे
एक पेड़ में गिरेगा
तो टीचर एक साथ क्लास में भेज रहे पढ़ाने के लिए, नहीं देते ये दो लोग, सबकी मोनोपथी चलती एक ही रह रहे। और कितना लिखने
आपस में मिलेंगे,
नहीं नारायण प्रति नारायण घर मिलेंगे, दो चक्रवर्ती आपस में नहीं, दो नारायण आपस में नहीं, दो प्रति नारायण आपस में नहीं मिलेंगे, और बलभद्र और नारायण में एक दूसरे की वृत्ति एक दूसरे से होती है। लक्ष्मण जी से धोखे से कह दिया था कि इतना स्नेह रहता है कि लक्ष्मण जी से कह दिया था कि राम झूठ ऐसे झूठ मूठ की राम की वृत्ति हो गई, इतना सोचते लक्ष्मण ने प्राण छोड़ दिया। और फिर लक्ष्मण को 6 महीने तक राम के घर लिए लिए फिरते रहे थे। भाई से अगर प्रेम देखना हो तो भाई भाई के बीच सबसे ज्यादा नारायण और बलभद्र का प्रेम रहता और किसी का नहीं रहता। और एक नरक जाने वाला है और एक स्वर्ग या मोक्ष जाने वाला है, इतना फर्क है दोनों में। इस तरह के नारद अब कम नहीं लिखे हैं, बहुत है नारद और कुलकर। अब ये तो 7-10 हो गए। इसमें लिखा है एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान तक भेजने में हस्त
जहाँ ना वहाँ
और ट्विस्ट करके
और जहाँ ना वहाँ
तीन और चाहिए नारद रुद्र और कुलकर, बाकी सब हो गए। शलाका पुरुष तो पूरे हो गए। प्रतिमा में नहीं होते, प्रतिमा के आसपास होते हैं, या तो प्रतिमा के नीचे रहेंगे या प्रतिमा के ऐसे चारों तरफ रहेंगे या साइड में रहेंगे, ऐसे दोनों साइड। पहले जो प्रतिमा बनती थी उसमें पूरा परिकर बनता, इसमें देवियां बनेगी, मंडल बनेगा, सारे प्रार्थनाएं उसमें बनते। पहले पूरा मंडल बनता था, नीचे भगवान रहेंगे, बाकी सब
पुरानी वेदी दिखाई देती है बाहर साइड। तीर्थंकर है मतलब अरहंत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर होंगे। अरहंत दो प्रकार के
हैं, जो कि तीर्थंकर हैं और जिसमें अकेले प्रातिहारी हैं, चिन्ह नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, वो सामान्य साहित्य प्रतिमा। और जिसमें चिन्ह भी नहीं वो भी नहीं सिद्ध प्रतिमा। अब मिलती नहीं ऐसी, बहुत कम मिलती है, लेकिन अब चिन्ह बना दिए उस पर भी
होशियारी कर दिया।
वो सब वही तो
उसकी जो ओरिजिनल कला थी वो सब काफी डैमेज हो गई,
लेकिन लोगों को बहुत अच्छा लगा ना
वो सब। आपको पॉलिश वॉलिश भी करा दी सब,
कब कुछ कल कह रहे हैं बहुत अच्छा
लगा। कल सैटरडे है
नहीं, तो कुछ नहीं, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करेंगे। मैं दिन भर मौन रहूंगा 6 बजे तक।
है क्लास तो नहीं दिया, क्लास तो नहीं
पढ़ेंगे या सुने ही पढ़ेंगे या हम सुनाएंगे। कल पढ़ रहे हैं आप लोग, हम सुनाएंगे।
हम लोग पढ़ाई मजा आते नहीं, ठीक बात है।
ये ठीक है, या फिर कोई दिमाग में मेरी चीज आएगी तो या तो ये तीन को लिख लेंगे अपन, ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। चला का पूछ रहा हूँ, तीन तीन के 5-10 मिनट में लक्षण लिखेंगे फिर खत्म हो जाए।
ओ चमत्कार की जो थोड़ा महाराज की है।